शक्ति नारी लाएगी परिवर्तन परिवर्तन स्वर्ग बनेगी अपनी धरती पावन होगा मानव जीवन परिवर्तन 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 परिवर्तन
ओम शांति। एक अग्निशिखा ब्रह्मा कुमारी जीवन। बहुत बहुत समय पहले विदेश में एक कन्या थी जिसका नाम था थेकला। उसकी किसी से शादी होने वाली थी और एक दिन वो अपने घर की बालकनी में खड़ी थी और वहां से एक ईसाई संत सेंट पॉल गुजरता है और गुजरते गुजरते वो ईसा मसीह के कुछ शब्दों का उच्चारण करता है। ही हु लवेथ गॉड शैल रिमेन चेस्ट इन माइंड एंड बॉडी। वो जो परमात्मा की ओर जाएगा, वो जो परमात्मा से प्यार करेगा, उसे अपने शरीर को और मन को पवित्र रखना होगा। वो कन्या जिसका किसी युवक से प्यार था, वो कन्या जिसकी अभी शादी होने वाली थी, वो कन्या जो कि सोच रही थी अपने विवाह के विषय में, अचानक एक सुबह ऐसा गीत सुनती है और वो गीत उसके हृदय को छू जाता है। दूसरे दिन फिर वो वहां खड़ी, फिर वो गीत सुनती है कि वो जिसे प्रभु की ओर जाना है, वो जिसे परमात्मा का बनकर रहना है, उसे अपने देह को और अपने मन को चेष्ट शुद्ध पवित्र रखना होगा। तीसरे दिन फिर सुनती है और ऐसा सुनती है कि उस सुनने का प्रवाह प्रभाव एक एक शब्द उसके हृदय में छप जाता है और एक पल में वो निर्णय कर लेती है कि संसार की ओर जाने वाला मार्ग अब मेरा नहीं, मेरा जीवन प्रभु के लिए है। और जैसे ही वो ये निर्णय अंदर कर लेती है और जैसे ही उसके होने वाले पति को ये पता चल जाता है कि इसने निर्णय किया है ब्रह्मचर्य का, और जैसे ही उसकी मां को पता चल जाता है, उसकी मां और उसका होने वाला पति दोनों ही जाकर राजा से उसकी शिकायत कर देते हैं और वो ऐसी शिकायत होती है क्योंकि उन दोनों ने इसे समझाने का बहुत प्रयत्न कर चुके उसके बाद की वो शिकायत थी, परंतु वो मानने को अब तैयार ही नहीं, जैसे जादू सा हो गया है, किसी ने सम्मोहन कर दिया है। वो लोग सोचते हैं शायद इसको प्यार हुआ है उससे, वो जो फकीर की तरह घूमता है सड़कों पर। सेंट पॉल और जब ये थेकला नहीं मानती है, इतिहास साक्षी है और क्रिश्चियनिटी में ये बताया जाता है ईसा के लगभग 100-200 वर्ष के बाद की घटना कि उस कन्या को सजा सुनाई जाती है, सारे गांव के सामने सड़क पर एक खंभे में बांधकर जिंदा जला देने की, बर्निंग एट द स्टेक, ताकि दूसरी स्त्रियां जो है संसार की वो देख ले अगर ऐसा कुछ करो तो ये हाल होगा। और वैसा ही होता है। जो पॉल होता है उसको कोड़ों से मारा जाता है, क्योंकि सबका यही कहना है कि इसने ही बिगाड़ दिया। परंतु ईश्वरीय चमत्कार होता है जब आग लगा दी जाती है और उसको बांध दिया जाता है, थोड़ी ही देर में अचानक बारिश होती है और आग बुझ जाती है और वो बच जाती है और वहां से निकल जाती है। द फर्स्ट मिरेकल। पॉल और थेकला, जिनका यह इरादा था कि सारे विश्व को परमात्मा पैगाम सुनाना है, रोम पहुंचते हैं, परंतु वहां पर भी उसका होने वाला पति उस कन्या का पहुंच जाता है और बहुत सारी साजिशें करता है। फिर उसको समझाता है, वो नहीं मानती। वो कहती है कि अब मेरा जीवन केवल प्रभु के लिए है। फिर से उसे एक झूठी उसकी शिकायत करके एक सजा सुनाई जाती है। एक बहुत बड़े अखाड़े में जहां ऊपर सारा गांव बैठा है और 3 भूखे शेर, नीचे 2 शेर और 1 शेरनी, उसके बीच में इस कन्या को धकेल दिया जाता है। पहले डराया जाता है, धमकाया जाता है, परंतु वो नहीं मानती, तो ये सजा सुनाई जाती है। और दिखाया है कि उस अखाड़े में वो जो शेरनी होती है अचानक सामने आ जाती है और उन 2 शेरों को आने नहीं देती और इसकी रक्षा करती है, इस कन्या की। और जो क्रिश्चियनिटी में दिखाया बैप्टिज्म, वो बाप्तिस्मा जिसको कहते हैं, वो खुद ही दिखाया है उस अखाड़े में, वहां जो पानी होता है, खुद से अपना जल अभिषेक करती है कि कहती है अब मुझे किसी भी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य गुरु की भी आवश्यकता नहीं, मैं अपना बाप्तिस्मा खुद कर रही हूं, खुद ही अपने हाथों से अपने इस जीवन को अर्पित करती हूं। और वो अर्पित कर देती है। वहां पर फिर से हलचल मच जाती है और वो वहां से भी निकल जाती है। फिर दिखाया है लंबा समय तक वो इटली में रहती है, लगभग उसकी उम्र तब तक 90 वर्ष हो जाती है, 60-70 साल तक वो वहां रहती है और धीरे धीरे उसमें ईश्वरीय शक्तियां प्रकट होने लगती है। ये कहानी ब्रह्मचर्य की कहानी है। और वो ऐसी ईश्वरीय शक्ति उस थेकला में प्रकट होने लगती है कि धीरे धीरे कई मरीज उसके पास आने लगते हैं और जो जो आता है सब ठीक होके जाते हैं, क्योंकि उसके स्पर्श में एक हीलिंग टच आ जाता है। और जब वो 90 वर्ष की होती है, एक तीसरा षड्यंत्र का हवाले करते हैं। वहां के जो चिकित्सक होते हैं कई समय से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सारे मरीज उसी के पास जा रहे हैं। वो जो एक गुफा में है, वो गुफा आज भी है वहां पर, तो वो सारे मिलकर एक अंतिम षड्यंत्र करते हैं कि कुछ ऐसे बदमाश लोगों को तैयार करते हैं और उसके पास भेजते हैं उसकी पवित्रता भंग करने, जबकि उसकी उम्र तब तक 90 वर्ष की है। और दिखाया है वो 3-4 लोग जैसे इस गुफा में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं और वो अकेली होती है, वो 3-4 सामने से वो पीछे सरकती है और एक अचानक दीवार वहां पर गिरती है। कहानी कितनी सत्य है पता नहीं, परंतु ईसाई धर्म के जो भक्त लोग हैं, रोमन कैथोलिक सेंट्स, वो इसको बहुत मानते हैं। और अचानक वो दीवार वहां गिरती है और वो अदृश्य हो जाती है सदैव। जैसे भारत में तीन लोगों के लिए दिखाया है, हमारे ज्ञान के अनुसार तो वो सत्य नहीं हो सकता, परंतु भक्ति में बताया है कि ये तीन भक्त ऐसे हैं जो सदैव विलीन हो गए। मीरा जो कि कृष्ण में लीन हो गई, मीरा की मृत्यु का कहीं कोई वर्णन नहीं। दूसरा चैतन्य महाप्रभु और तीसरा संत तुकाराम महाराष्ट्र। उसी तरह उधर इस थेकला का वर्णन है, बाद में लोगों ने उसे सेंट थेकला कहा। द स्टोरी ऑफ सेंट थेकला एंड सेंट पॉल। बी ई प्योर इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज प्योर। जैसे तुम्हारा वह पिता संपूर्ण पवित्र है, तुम्हें भी ऐसे ही संपूर्ण पवित्र बनना है। वह देह वह मन जो तुम प्रभु को अर्पित कर रहे हो, उसमें जरा भी अपवित्रता न हो। झीनी झीनी रे चदरिया। ये कबीर कहते हैं, ये देह जो है चादर है। इस चादर में गंदगी ना हो, अनटच्ड रहे, अस्पर्शित, किसी भी विकारी का स्पर्श नहीं। जाग सजनिया जाग। आज सुबह गीत था साकार मुरली में, उस गीत में नवयुग का नवयुग एक शब्द आता है। ऐसे 10 नए चीजें उस गीत में है। नवयुग, नया जमाना, नई कहानी, नई चदरिया, गीत में कबीर कहता है। क्योंकि वो जुलाया था, वो शरीर की तुलना चादर से कर रहा है। धीरे धीरे जतन से इसको बनाओ। किस किस से ये बनी है और कैसे व्यक्ति इसको दूषित करता है, विकार से, संकल्प से, संस्कार से, पाप से, विकर्म से। जाग सजनिया जाग। नया जमाना, नई कहानी, नया युग, नई बातें, पुरानी बातें छोड़। बाप आए हैं सजनियों को जगाने। सभी सजनिया है, मेल फीमेल, साधु जो साधना कर रहे, भक्त जो पुकार रहे हैं, सभी सजनिया है। और सभी सजनिया इस समय रावण की कैद में है। सभी सजनिया इस समय दुखी है, दुखधाम है। वह थेकला जो थी वो एक उदाहरण है पवित्रता का। वह स्त्री जो सोच रही थी संसार में जाऊं, अचानक हृदय परिवर्तन हुआ और संसार का वो मार्ग उसने ठुकरा दिया। और जिस मार्ग पर वो चली उसमें अचल रही, अडोल रही, फिर कभी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सब कुछ सहा कर दिया उस एक के लिए और इस एक की याद में। ऐसा ही यह समर्पित ब्रह्मा कुमारी जीवन है। और यह जीवन इतना आसान नहीं। बाबा ने कहा यह सर्वश्रेष्ठ जीवन है। संसार की सारी स्त्रियां एक तरफ और एक ब्रह्मा कुमारी एक तरफ, जो प्यूरिटी यहां है वो उनमें नहीं हो सकती। जो संवेदनशीलता एक स्त्री में होती है वो पुरुष ब्रह्मचारी में भी नहीं। जो समर्पण नारी का है वो पुरुष का कभी नहीं होता है। बाबा ने सभी माताओं को, बहनों को चुना। बार बार हमें एक बात स्वामी विवेकानंद की याद आती है, जो उन्होंने एक लेक्चर में कही थी, भविष्यवाणी जैसी जैसे की, अ डे विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड एवरीवेयर। एक दिन आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और परमात्मा संदेश सारे विश्व में फैलाएगी। भारतीय पुरुष नहीं, भारतीय नारी। तो यह जीवन क्योंकि इतना महान है, क्योंकि इतना श्रेष्ठ है, इसमें इतनी ही परीक्षाएं देनी पड़ेगी। अग्नि है, अग्नि शिखा है, ये अग्नि की लपटे है। इस जीवन में दो मार्ग है, एक मार्ग है संसार की ओर जाने वाला, एक मार्ग है परमात्मा की ओर जाने वाला। दोनों ही मार्ग में जलना है, परंतु जो संसार का मार्ग है, जो गृहस्थ का मार्ग है, जो विकार का मार्ग है, उसमें जल जल के व्यक्ति भस्म हो जाता है, राख बचती है। और जो ब्रह्मा कुमारी का मार्ग है, जो समर्पण का मार्ग है, जो ईश्वर का मार्ग है, जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, उसमें भी अथाह जलना है। प्रचंड आग की लपटे यहां पर भी है, परंतु यहां जल जल के, जल जल के व्यक्ति क्या बन जाता है? हीरा। जलना तो दोनों तरफ है। ऐसा नहीं कह सकता है कोई कि इस मार्ग पर आ गए तो यहां जलना नहीं है, यहां तो सिक सिक झुक झुक मरमर, पल पल प्रतीक्षा है, एक एक पल प्रतीक्षा है, परीक्षा है। तो इस अग्निशिखा जीवन में, आज की इस भट्टी में हम ऐसी 10 परीक्षाओं की चर्चा करेंगे, जिससे हर एक ब्रह्मा कुमारी को गुजरना पड़ता है। और जब तक इससे नहीं गुजरेंगे तब तक शक्तिशाली भी नहीं बनेंगे। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं इससे न जाऊं। अगर परीक्षा को पास कर जाओ, विघ्नों को पास कर जाओ और परिस्थिति को पार कर जाओ, इन तीनों को पार करने के बाद, ये मैं यहां पहले और ये मैं यहां अब, जो मैं इनको पार करने के बाद हूं, वो पहले से अधिक शक्तिशाली है। पेपर ऑब्स्टैकल सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति, पेपर और विघ्न को पार करने के बाद जो मैं हूं, वो नहीं है जो पहले वाली है। द रिजल्ट इज ग्रोथ, परिणाम जो होगा वो विकास। एक है चैलेंज लिया ही नहीं और भाग गए, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मैंने कभी की नहीं, ये सेवा एकदम नई है, इस स्थान पर मैं नहीं जा सकती, ये स्थान तो मेरे लिए अपरिचित है, यहां के लोग, ये भूमि बंजर है। परंतु चैलेंज ले लिया और लेने के बाद जो मैं रहूंगी, जो वो नहीं रहूंगी जो पहले थी। किसी भी परिस्थिति को पार करने के बाद व्यक्ति कुछ और हो जाता है। एक चित्र किसी ने भेजा था हमको, एक हिरन का। हिरन है, एक तीर लगा उसको और वो घायल होकर नीचे गिर गया। एक दूसरा चित्र है उसी हिरन का, अब बूढ़ा हो गया है, पूरा शरीर में तीर लगे हुए हैं परंतु खड़ा है। पहले एक तीर लगता था, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, गलत व्यवहार कर दिया, इतना सेंसिटिव कि घायल, दुखी, सोच रहे यहां से जाने का कोई मार्ग, कोई साथी, कोई कंधा रोने के लिए, अच्छा लगता है रोने से, हल्का हल्का महसूस होता है। अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो, टीचर से मुलाकात, योग की धूप से आंसुओं की टंकी सुखा दो। एक बहन है हमसे कहती थी हमारी टंकी इतनी पावरफुल है कि योग की धूप भी कुछ समय पहले एक बहन आए थे हमारे पास ओपीडी में, तो हमने पूछा क्या तकलीफ है, तो उन्होंने कहा रोना आता है। तो हमने पूछा कब, तो उन्होंने कहा रोज। फिर हमने पूछा कितनी बार, तो उन्होंने कहा 28 बार एवरी डे। हिसाब रखा है रोने का भी, क्यों क्यों हमने अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाया है। उस दिन एक बहन कह रहे थे ओपीडी में, कोर्स कराने में कभी कभी लज्जा आती है। हमने कहा क्यों, कह रही थी हम खुद ही अशांत है, क्या शांति का पाठ पढ़ाए दूसरों को, कैसे कोर्स कराए, खुद ही नींद नहीं आती है, खुद ही बेचैनी है अंदर, और दूसरों को कैसे बताए कि आत्मा शांत स्वरूप है, अभी शांत हो जाओ। अच्छी बात है या बुरी बात है ये, हम विश्व को पैगाम देने वाले हैं, शक्ति से भरने वाले हैं, पवित्रता से भरने वाले, यदि हम ही हलचल में है, हम ही दुखी है, हम ही अशांत है, तो क्या कहेंगे। अभी अभी संडे, अभी अभी बाबा आए थे, जो अव्यक्त वाणी चली 2008 की, पढ़ी सबने, प्यूरिटी की, प्यूरिटी अर्थात दृष्टि वृत्ति कृति, ये तीन परख है प्यूरिटी की। आईना, आईने में देखो प्यूरिटी की क्या परसेंटेज है। तीन चारों कालों को बाबा ने याद किया, अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंत संगम काल। उसमें कृति में एक बात बताई थी, दुख न लेना। दुख लेना, दुखी होना अर्थात अपवित्रता। यदि बार बार आंसू है, अगर बार बार दुख है, बार बार उदासी है, बार बार कंप्लेंट है, बार बार ये जीवन की गरिमा और श्रेष्ठता का कोई भान नहीं है, और बार बार ऐसा लगता है पता नहीं ये क्या हो रहा है, कमजोर है, कोई चाहिए, अंदर ही अंदर जैसे अंदर ही अंदर यदि कोई दुख है, सॉरो एब्जॉर्प्शन, दुख को सोखती है आत्मा, क्यों क्यों इतना प्यार है दुख से, क्यों दुखी होना चाहती है, क्यों उदास होना चाहती है, क्यों रोना चाहती है, शायद अज्ञात में प्यार है। सब अच्छे से बात करे, सब अच्छा अच्छा कहे, वो याद नहीं रहता, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कह दिया क्या यही सीखा है, क्या यही तुमको आता है, किसी ने डांट दिया तुरंत दुखी, तुरंत उदास। हम एक सेवा केंद्र पर गए थे, बड़ी बहन जी कह रहे थे हमारी बहनों को कुछ बताओ, जब देखो तब कहती है, धमकी देती रहती है, हम चली जाएंगी घर। थोड़ा कुछ कहा तुरंत बुरा मान जाती है, थोड़ा कुछ कहा 3 दिन तक बात करना बंद, उदास नाराज। अंग्रेजी में कहते हैं HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन। HSP, ये HSP व्यक्तित्व फीलिंग देवी ऐसा है कि इनके साथ रहना बहुत मुश्किल है। और ब्रह्मा कुमारी जीवन में सबसे बड़ी बाधा कहो यही है, सेंसिटिव नेचर। आंसू तो जैसे यहीं रखे हुए हैं, किसी ने कुछ कहा और तुरंत तुरंत बहना चालू। क्या किसी मुरली में बाबा ने यह कहा है कि आंसू तुम्हारी शक्ति है? स्त्री स्वभाव है तुम्हें ना, तो स्त्री स्त्रैण स्वभाव से ऊपर उठना है। ये जो स्त्रीत्व के स्वभाव है, संस्कार है, दुखी होना, उदास होना, नाराज होना, ईर्ष्या करना, यह हमारी शोभा नहीं है, यह हमारी श्रेष्ठता नहीं है। इससे तो बाहर जाना है, कहां जगदम्बा का समान और कहां पर किसी ने कुछ कह दिया और दुखी हो गए, उदास हो गए, तीन दिन नाराज, मुरली सुनने में सुनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई कुछ कह रहा है उनमें इंटरेस्ट नहीं। जिन्हें पालना करना है वो खुद दुखी नहीं हो सकते, उदास नहीं हो सकते, सुख दुख को सख एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दुखी होने के लिए बाबा ने कहा है दुख लेना अर्थात अपवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा में ही वो नहीं है। और यदि हम, बाबा ने कहा ना, एक दिन भी यदि कोई अपवित्र है तो किस कैटेगरी में जाएगा? सोचो, यहां दो लाइनें बनी है, एक पवित्रता की, एक अपवित्रता वालों की। और बाबा कहे कि जो समझते हैं कि हम पवित्र है वो इस लाइन में आ जाओ। क्या हम आ पाएंगे? क्योंकि पवित्रता की केवल ब्रह्मचारी इतनी परिभाषा नहीं है। पवित्रता बहुत ऊंची चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है। उदास हो रहे अर्थात कोई ना कोई कामना है जो अपूर्ण है, काम है, काम का ही अंश है वो। काम पूर्ण नहीं हुआ, क्रोध, बाधा आई, मोह और बढ़ता है, एक के पीछे एक सारे विकार। तो हम बात कर रहे थे इस जीवन में ऐसी कुछ परीक्षाएं देनी पड़ेगी, ऐसी 10 परीक्षाओं की हम चर्चा करेंगे। कुछ कुछ बातें कठोर लगेगी, हृदय को संभाल के रखना। और हम नहीं चाहेंगे कि ये क्लास इस हॉल से कहीं बाहर जाए, वो आप तक ही रखिए, उसको होने दीजिए। केवल ये क्लास, बाकी रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर कुछ बातें हम ऐसी बताने वाले हैं वो भाई को बाद में बोल सकते हैं, कहीं ना भेजिए। नहीं, सबसे पहली बात, सबसे पहला पेपर जिससे हरेक समर्पित ब्रह्मा कुमारी को गुजरना पड़ेगा वो पेपर है लौकिक से आने वाला पेपर। कोई बीमार पड़ेगा, किसी की मृत्यु होगी, आर्थिक परिस्थितियों में हलचल होगी, फोन आएगा, उधर से एक फोन और इधर हलचल, उधर बीमार और हम यहां बीमार, उधर भाई को कुछ हो रहा है, इधर हमको कुछ हो रहा है, उधर मां को कुछ हो रहा है, इधर हमको कुछ हो रहा है, उधर पिता को कुछ हो रहा है, इधर हमको कुछ हो रहा है। संन्यास मार्ग में अंग्रेजी में एक कहावत है, संन्यास अर्थात कट द ब्रिजेस। यदि यहां पर आर्मी है और बीच में एक खाई है और इधर जाना है, बीच में एक पुल डालते हैं, पुल को डालने के बाद जब उस ओर चले जाते हैं पुल को काट देते ताकि भागने का कोई मार्ग ना बचे, लड़ेंगे या तो मरेंगे, पीछे भाग कर नहीं जाएंगे। कट द ब्रिजेस, ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात कट द ब्रिजेस, एक बार उस घर से इस घर आ गए उससे अब कोई लेना देना नहीं, कट कर दो। हां, तोड़ निभाना, संबंध निभाना वो और बात है, परंतु तोड़ निभाने के नाम पर अपने मोह का पोषण नहीं करना है। अपने लगाव को, अपनी आसक्ति को, अपने अटैचमेंट को प्रेम की संज्ञा न दो। यदि कोई अपने मोह को प्रेम कहता है, व्याकरण ही बदलने की आवश्यकता है। उस ओर से इस ओर आ गए, अब वहां से क्या, तुम्हारी नैया उठ चुकी है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तुम्हें उस संसार से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी बोट निकल पड़ी है, उन संसार वालों की बोट वहां खड़ी है, साकार महावाक्य है बाबा के, तुम्हारा उस संसार से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। फिर आसक्ति जा रही है, फिर घंटों बातें हो रही है फोन पर, किस लिए? क्या उनसे दिन में 10 बार बात करके उनकी समस्याएं हल होने वाली है, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी? और यदि अज्ञानी है और मोह है, फिर तो और हलचल। जिस ब्रह्मा कुमारी को इतने सारे स्टूडेंट्स की पालना करनी है, वो खुद यदि किसी के मोह में फंसी है, तो पालना कैसे कर पाएगी? और पेपर लौकिक से आएगा, चाहे ज्ञान में हो या न हो। ज्ञान में होने के बाद भी मोह हमने देखा है बहुत है। हजारों बीके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बहनें आती है, हम देखते हैं जितना मोह लौकिक वालों का भी नहीं है उतना इनका है। मां बाप का भी और बेटी का भी, जितनी हलचल संसार वालों की भी नहीं है उतनी इनकी है। पिछले कुछ मास में हॉस्पिटल में लगभग 5-6 भाई बहनों के पिता ने शरीर छोड़ा, उसमें एक हमारा एक डॉक्टर है जो कि अज्ञानी है। उसके पिता ने तो अचानक शरीर छोड़ दिया, एकदम यंग थे, हार्ट अटैक आ गया ट्रेन में ही और चले गए। हमने देखा ये सारे बीके जो सारे संसार को आत्मा की अमरता का ज्ञान सुनाते, सब हलचल में, और वो एक ही डॉक्टर, यंग 30 साल की उम्र, सबसे ज्यादा स्टेबल वही था। उसके भी पिता ने शरीर छोड़ा और वो भी अचानक, और बाकी ये पूरा बीके परिवार, ब्राह्मण परिवार, वहां पर भी हलचल, परंतु कितनी हलचल, रोना चालू है, आंसू आ रहे हैं। योग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, परंतु अंदर ही अंदर मोह फंसा है, मोह में आत्मा फंसी है। कट द ब्रिजेस अर्थात पुल को काट दो, ड्राउन द बोट दूसरा है, नैया को डुबो दो, उस किनारे से इस किनारे जिस नाव में बैठकर आए अब उसको डुबो दो, ताकि वापस उसी नाव में बैठ के वापस उधर रिटर्न जर्नी करने का कोई मोह ना हो। थ्रो द लैडर, सीढ़ी को फेंक दो, जिस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए हो अब उस सीढ़ी को ऊपर जाने के बाद फेंक दो, नहीं तो वापस उसी सीढ़ी से नीचे आओगे। सबसे पहला नष्ट मोह का पाठ मुचात्मा से चालू होता है। हां, उनकी सेवा करनी है, हां उनको शुभ भावना रखनी है, रखो, उनकी सेवा करो, सब करो, परंतु मोह में नहीं। वो आत्माएं हैं बस, उनका काम था, धन्यवाद, जन्म दिया, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि सारा जीवन उन्हीं की सेवा में अपना ज्ञान, योग, धारणा सब कुछ छोड़ दिया। और स्थिति हलचल वाली, दुखी, उदास, ऐसा भी नहीं कि श्रेष्ठ स्थिति है। और बिना हम सोचते हैं यदि उनमें से कोई बीमार है, हमारी सकाश उन तक तभी पहुंच सकती है जब हम नष्ट मोहा है। अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा 87, बिना बेहद के वैराग्य के सकाश देने की सेवा हो नहीं सकती। हम सोचते हैं कि हम इसके लिए योग करें, उसके लिए योग करें, इसके लिए करें, उसके लिए करें, नहीं जाएगी हमारी सकाश, क्योंकि मोह में फंसे हैं। सबसे पहले तो मेंटल डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट, इंटेलेक्चुअल डिटैचमेंट, इस अवस्था में ही उनकी सेवा की जा सकती है। अभी क्या चल रहा है, बार बार फोन कॉल्स, बार बार बातें, किस लिए? और हमने ऐसी भी बहुत सारी बहनें देखी है कि जो इतना नष्ट मोहा है, सेंटर पर ही माताजी आते पर किसी को पता नहीं चलता है इस बहन की ये मां है, सेंटर ही पिताजी आते हैं पर किसी को पता नहीं चलता है ये इनके पिताजी है, पर यहां तो मम्मी, इस शब्द में ही मोह है। और हमने ऐसी भी माताजी बहनें देखी है जो अपनी माताजी को सरनेम के आगे जी लगा के माताजी पुकारती है, किसी को पता ही नहीं चलता ये इनकी माताजी है, इतनी नष्ट मोह। और कुछ कुछ मेरे पिताजी ठीक होना चाहिए, डॉक्टर साहब कुछ भी करो आप, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं मेरे पिताजी का ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, ये करूंगी, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, एक ही वाक्य में चार बार आता है, इधर नहीं चला तो उधर चले जाएंगे वापस, सोचा है अंदर। लौकिक से सारे पेपर आएंगे, मृत्यु, स्वजनों की मृत्यु, अपनों की मृत्यु, सब कुछ खाक होने वाला है, कोई थोड़ी ना बचेगा। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, यदि मैं तुम्हें रास्ते पर मिलूं तो मेरी गर्दन काट देना। ये शिष्य का सबसे अंतिम मोह है गुरु में। ऐसा कहा था, कट, इसका अर्थ वैसा नहीं है जैसा वो लग रहा है, अर्थात मैं तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहता, तुम्हारा जो मुझ में मोह है उस मोह को भी नहीं रखना। बी अ लाइट अनटू योर सेल्फ अपो दीप भव। आनंद को जाते समय कह के गए थे कि अपना प्रकाश खुद बनना, मैं किसी का प्रकाश नहीं, मेरे पीछे नहीं आना, किसी नए धर्म की स्थापना नहीं कर देना मेरे पीछे, पर वैसा हुआ नहीं जो उन्होंने कहा था। और एक और चीज कही थी, मैं जिस पल आनंद रो रहा है आप चले जाएंगे, मेरा कैसा होगा, मेरे कैसा होगा, मैं क्या करूं, 40 साल मैं आपके साथ रहा हूं, वो कहता है मेरे जाने के बाद ही वास्तविक तेरा जागरण होगा। वो शरीर छोड़ देते हैं और बताया उसी रात आनंद को वही अवस्था प्राप्त होती जो बुद्ध को उस गया वृक्ष के नीचे 40 वर्ष पहले हुई थी। तब तक नहीं हुई जब तक वो उनके साथ था, उनके साथ घूम रहा था, सुन रहा था सारा कुछ उनके प्रवचन, पर जिस दिन वो चले गए उस दिन ही जैसे कि एनलाइटनमेंट हुआ। मोह ही बाधा बन जाती है, सबके साथ रहो सभी के साथ, परंतु बुद्धि में कोई नहीं, कल की अव्यक्त, कल की साकार मुरली, जहां जहां बुद्धि जाए बुद्धि को हटा दो वहां से। मुझको सहारा देने वाले, सहारा एक ही है। तो लौकिक में मृत्यु, लौकिक में बीमारी, लौकिक में आर्थिक परिस्थितियां, लौकिक में भाई है जो बहुत शराब पीता है, क्या किया जाए? लौकिक में बहू आई है उधर घर में, बहुत हैरान कर रही है सबको, परंतु बहन जी इधर सेंटर में हलचल में है। उस संसार से इधर आ गए हो, अब वो संसार उनका है, वो तुम्हारा दायित्व नहीं, they are not your responsibility. एक बहन बहुत पश्चाताप कर रही थी, बहुत आंसू नहीं रुक रहे थे, मेरे से ऐसा पाप कैसे हुआ। सेंटर की भंडारी के बहुत सारे पैसे मैंने मैंने घर पर भेजती रही, क्योंकि घर की परिस्थिति बहुत खराब थी, फोन आते थे। परंतु वो एक एक पाई यज्ञ की थी, एक एक बूढ़ी बूढ़ी माताओं का दिया हुआ एक एक आना बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारा नहीं है, रखने के लिए दिया है, ट्रस्टी है खाली। और फिर पश्चाताप और फिर दुख। कैसे छूट पाएंगे उस दुख से, उस प्रायश्चित से? क्या प्रायश्चित करेंगे? क्या कहेंगे बाबा के सामने बैठ के, बाबा मुझे माफ कर दो? इस ड्रामा में माफी हो नहीं सकती। जो किया है भुगतना पड़ेगा। धर्मराज का दरबार है, इंद्र सभा है, झूठ यहां चल न सके। किसके सामने झूठ बोलेंगे? बाबा के सामने। हां, सबको तो चला लेंगे, उसको कैसे चलाएंगे, स्वयं को कैसे चलाएंगे? आत्मवंचना, सेल्फ डिसेप्शन यदि हो रहा है तो। ये तो उदाहरण दिए केवल, इससे भी कड़े उदाहरण है बहुत सारे। पहला, लौकिक से पेपर आएंगे, हमें अचल रहना है। हां, उनकी जितना मदद करनी है हम करें, प्रेम देना है दे, सकाश देनी है दे, परंतु डिटैच रहकर, अलग रहकर, अपनी मर्यादा में रहकर, फंसकर नहीं। घंटों बात करने से उनकी समस्याएं, प्रॉब्लम्स कभी भी हल होने वाली नहीं। एक लौकिक। दूसरा पेपर है बीमारी का पेपर, शरीर की बीमारी। आज सुबह की साकार मूल्य इत्तफाक बाप दिखाएंगे, अचानक छत गिरेगी, धरती हिलेगी। तुम्हें साक्षी रहना है, हलचल में नहीं आना है, हर्षित रहना है। बीमारी आएगी, ऐसी ऐसी बीमारियां जिसके बारे में सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। हॉस्पिटल में एक बहन आते हैं, बहुत सेवा करते थे, यंग, एक्सीडेंट हो गया, दोनों हाथ और दोनों पांव पैरालिसिस। क्या करेंगे? मनसा सेवा। शरीर के हिसाब बहुत कड़े हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं। कौन सी बीमारी आ जाए? आज सुबह साकार मुरली, जाग सजनिया जाग, सभी सजनिया दुखी है। इस संसार में बीमारी रोग होगा जरूर, जरूर शब्द है मुरली में। कुछ ना कुछ बीमारी है, कभी भी आ सकती है। ऐसी बीमारी जो पता चले पहले तो उसका डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा है, सारा जांच किया जा रहा है, इतनी बड़ी फाइल है, सब कुछ ठीक, परंतु हम ठीक नहीं है। डॉक्टरों के पास जाओ तो कहते सब ठीक है, परंतु हम ठीक नहीं है। कितनी आशा से, कितनी अपेक्षा से सारी ब्लड टेस्ट कराओ और डॉक्टर के सामने रखो और एकदम उदासी छा जाती है जैसे ही वो कहता है कि सब नॉर्मल है। कितनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बीमारियां दूसरों को होती, हमको कुछ भी नहीं। हमको तकलीफ तो बहुत है पर रिपोर्ट में कुछ आता नहीं। बुखार, हमेशा ही बुखार रहता है। कितना नहीं, उसमें नहीं आता है, हमको रहता है। कोई लोग इससे भी दुखी है कि हमको तकलीफ बहुत है परंतु कुछ नहीं, सब बोलते सब नॉर्मल है। क्या हम हमेशा ही दूसरों को मिलने ही जाते रहे ऐसे जो बीमार है? हमको भी तो मिलने कोई आए, हमको भी तो सुख मिले। यहां पर सलाइन लगे और वो जो बूंदे गिरती है सलाइन की, एक एक बूंद में आह कितना आनंद है। एक महिला थी, उसको एक बीमारी थी, मेडिकल में उसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक, अर्थात पेशेंट सोचता है मुझे सब प्रकार की बीमारी है पर रहती कुछ भी नहीं। और उस एक एक बीमारी को वो पढ़ता है, अपेंडिक्स के बारे में पूरी डिटेल पढ़ता है, अपेंडिक्स को पेशेंट को क्या तकलीफ होती है, फिर वैसी ही एक्टिंग करते हुए डॉक्टर के पास पहुंचता है, फिर ऑपरेशन कराता है अपेंडिक्स का, फिर दूसरे डॉक्टर के पास दूसरी बीमारी के बारे में पूरा पढ़ता है, फिर वैसा ही करता है, फिर गॉल ब्लैडर निकाल देता है, फिर और कुछ 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 कुछ, ऐसे कई सारे डॉक्टरों के पास डॉक्टर शॉपिंग चालू रहती है। एक महिला थी जो कहती थी कि मुझे बहुत बीमारियां, पर जिसके पास भी जाते थे डॉक्टर कहते थे तुमको कुछ नहीं है, तुमको कुछ नहीं है, तुमको कुछ नहीं है, सब तुम्हारा ठीक है। तो सारे सबको परेशान कर छोड़ा था उसने। और एक बार उसकी मृत्यु हो गई तो उसने अपने कब्र में लिखवाया, देखा मैंने कहा था ना मैं बीमार हूं, पर तुम लोगों ने नहीं माना। दोनों प्रकार है, एक तो चाहते हैं कि हमें कोई बीमारी हो जाए अच्छी सी तगड़ी बीमारी, क्यों ये भी क्यों, क्योंकि अंदर अनफुलफिल्ड डिजायर्स एक्सपेक्टेशंस, कोई हमें देखता नहीं, कोई हमारे तरफ ध्यान नहीं देता, और जैसे बीमार पड़ो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित हो जाता है, अटेंशन सीकिंग, हिस्टेरिया, हिस्टेरिकल अटैक्स, अभी अभी चक्कर आ गए और चक्कर आके गिर जाओ, और गिरो तो फिर सब लोग लेके जाते हैं। हाँ पी लीजिए यही दे दे तो अच्छा है। तो एक तरफ तो है कि बीमारी आएगी, हम ये नहीं कह सकते कि मुझे कोई बीमारी नहीं, हाँ ये अपने शरीर का ध्यान रखना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम देखते हैं बहने आती है, पहला ही रिपोर्ट थायराइड का 102, इसके पहले कभी जांच की, कभी नहीं की। तकलीफ क्या थी? 5 साल से थकान चल रही है, 5 साल से उदासी लगती है, जांच क्यों नहीं की? सोच रहे नहीं वो शायद टेंशन की वजह से हो रहा है, सेंटर पे डिस्टर्बेंस बहुत है। अरे वो डिस्टर्बेंस नहीं था, वो थायराइड की बीमारी चल रही थी, उसके सिम्टम्स थे, उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम आते हैं कितनी सारी बहनें ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4, क्यों नहीं दिखाया? हमको लगा ऐसे ही है, ध्यान ही नहीं दिया। और अभी पता चला तो अभी क्या करें, अभी ना ऑपरेशन कर सकते हैं, अभी सीधा कीमोथेरेपी। कितनी बहनों को कीमोथेरेपी दी। ये जो देह है बहुत महत्वपूर्ण साधन है तपस्या का, यदि ये ठीक नहीं तो तपस्या भी नहीं हो सकती। इसके लिए इसको ठीक रखना, इसको स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोचो यदि हम बीमार पड़ जाए, हमारी सेवा में एक सेवाधारी, हम बीमार पड़ जाए, फिर वो खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, कितना सारा। कितने हमने ऐसे भाई देखे हैं जिनको शुगर थी, जिनको बीपी था, दवाइयां बार बार छोड़ देते थे, जब भी आते थे दवाई वो एक महीना ली और छोड़ दी, अभी आए 200 ब्लड प्रेशर के साथ घूम रहे हैं। कितने उदाहरण है, एक नहीं कई सारे, 400-400 शुगर के साथ में घूम रहे हैं। वो कहते हैं नहीं हम योग से ठीक करेंगे, बाबा से किरने लेंगे और फिर वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ दवाई लो, नहीं नहीं दवाई थोड़ी ना, हमने दवाई, हम दवाई हम नहीं लेंगे, हम तो योग की पावर से ठीक करेंगे, संकल्प की शक्ति से। आप कुछ योग का बताओ, तो ये तो इतना है, हाँ बाबा की इच्छा, बाबा चाहता है शुगर ज्यादा रहे। परहेज तो ना, तो परहेज ना, तो एक्सरसाइज ना, तो वॉकिंग। एक बात हम भूल रहे हैं कि हमें तपस्या इस तन में करनी है। दूसरी, यदि ये बीमार पड़ जाए तो यज्ञ जो पैसा लगेगा वो यज्ञ का लगेगा, पानी जैसा पैसा जाएगा। एक एक दिन का बिल 20,000 होता है आईसीयू का। एक तरफ हमें अपने आप को, देह को ठीक रखना है, दूसरी तरफ या ये सब करने के बाद भी यदि बीमारी आ जाती है, और वो आएगी, तब अचल अडोल रहना है। ऐसा नहीं बीमारी आई तो हिल गए, अरे मुझे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, इतने प्रश्न, इतने प्रश्न। जो बाहर के लोग भी इतने प्रश्न नहीं पूछते, इतना प्रश्न पूछते, दिन रात पढ़ते रहते हैं उसके बारे में, और हजार हजार, जो जितना साइड इफेक्ट्स के बारे में पढ़ता है उसको उतने ज्यादा होते हैं। गूगल खोला और हर ड्रग का साइड इफेक्ट आके पूछेंगे, ये इसके वजह से तो नहीं हो रहा है, उसके वजह से तो नहीं हो रहा है, और दिन रात जैसे बीमारी। कुछ कुछ भाई ऐसे हैं कि उनकी बहनों ने हमको कहा कि इनको आप ठीक कर दो, मैं तुमको इनाम दूंगी अगर इसको ठीक कर दिया तो। दो दो बार एंजियोग्राफी कर चुके हैं, तीन तीन बार MRI कर चुके, कहीं कुछ नहीं आता है, फिर भी करते ही रहते, करते ही रहते, करते ही रहते हैं। पूरा हेल्थ कॉन्शियसनेस ठीक है, पर ओवर कॉन्शियसनेस भी ठीक नहीं है। बस बीमारी के ही बारे में सोच रहे दिन रात। यहां कुछ थोड़ा सा कैंसर तो नहीं है, अब समझा दिया नहीं है, नहीं है, नहीं है, पर हर बार वही, फिर जो भी नया डॉक्टर मिलेगा उसको पकड़ो और उसको पूछो, ये वो तो नहीं है, ये वो तो नहीं है, ये वो तो नहीं है। अंडर कॉन्शियसनेस भी नहीं और ओवर कॉन्शियसनेस भी नहीं, दोनों नहीं चाहिए, बीच का ध्यान रखना है, केयर करनी है, अटेंशन रखना है। जब जब सुखधाम में ब्रह्मा भोजन बनता है उसके दूसरे दिन लूज मोशन के साथ में 3-4 को तो आना ही है। तंदूरी पता नहीं बाद में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसे हो जाता है। इतनी बेचैनी 7:30 बजे से चालू हो जाती है। कब योग का गीत, शिव की याद रहेगी जब पूरा हुआ, और चलो, और थोड़ा सा कमरे के लिए, थोड़ा सा दूसरे दिन के लिए। इधर भी नहीं, उधर भी नहीं, बीच में रखना है स्वयं को। ना अति ऊंचम ना अति नीचम, अति सर्वत्र वर्जते। और बीमारी फिर भी आएगी, और जब आएगी तब अचल अडोल। हमने ऐसी ऐसी दादियों को देखा है, यहां पर लाइन लग रही है, यहां लाइन लग रही है, कोई आवाज नहीं। पालू दादी, निर्मल शांता दादी, सारी दादियां इधर, जो लगाना है लगाओ, इधर लगा रहे, नहीं मिल रहा, इधर लगा रहे, इधर लगा रहे, कोई आवाज नहीं। इतनी देह से डिटैच स्टेज। और एक बहन को तो ऐसे भी देखा है हमने, अच्छी बात नहीं है पर बता रहे, जिन्होंने दिन रात सेवा की, कई सारे सेवा केंद्र खोले, हजारों लाखों का कोर्स कराया होगा, पर जब बीमार हो गई और कैंसर हो गया, इतना चिड़चिड़ापन, इतना चिड़चिड़ापन, ये बाबा कुछ नहीं करता। और जब अंत समय आया तो उनको इच्छा हुई, अभी मुझे मसाला डोसा चाहिए, और वो मसाला डोसा की याद में ही शरीर को छोड़ा। बाबा वो सब एक तरफ हो गया, किसी की याद नहीं, न यज्ञ, न बाबा, न दादिया, सब एक तरफ, सारी बुद्धि भोजन में, टेस्ट में। व्यवस्था थी, एक भाई सारी जीवन समर्पित होकर सेवा की, दिन रात भाग दौड़, परंतु ज्ञान योग के लिए समय नहीं था। और जब बीमार पड़े और इस एक दिन के लिए सेवाधारी छुट्टी पर चला गया, सोचने लगा कैसा है, यहां पर कोई सेवाधारी भी नहीं है मेरे पास, इससे तो अच्छा होता शादी कर ली होती, आज बीबी होते, बच्चे होते और ध्यान रखते मेरा, ये संकल्प चल रहे थे। बाद में शरीर छोड़ दिया उन्होंने कुछ समय के बाद, पर हम ये बता रहे हैं कि ये वो आत्माएं हैं जो लंबा समय तक ज्ञान में चली, केवल सेवाएं करते रही, सेवाएं, तपस्या करने का, चिंतन करने का, मनन करने का, ज्ञान का, अपनी स्वयं की भट्टी वो नहीं की, तो ये हाल हुआ। अंतमति सोगति आज की मुरली में है, सुबह की साकार मुरली। किस अवस्था में हम शरीर छोड़ेंगे? क्रिकेट मैच यहां तो नहीं देखते ना कोई? बहुत क्रेज होता है लोगों को, ब्राह्मणों को, भाइयों को ज्यादा होता है। हाँ, बहनों को इतना नहीं। सीरियल्स, टीवी, न्यूज, ये सब चीजों में इतना रस। कोई कोई तो बैठे कई, चलो अच्छी बात तो नहीं है, पर होता है, हमने देखा है, आंखों से देखा है। सब ज्ञान योग छोड़ के बैठी हुई है सारी, और टीवी चल रहा है, सीरियल चल रहा है, कोई डांस का कार्यक्रम चल रहा है, ये सब में बुद्धि लगी हुई है। एक बार शांतिवन में बाबा आए हुए थे। बाबा आए और गए वहां पर एक जगह टेरेस पर, किसी एक जो बड़े बड़े हॉल्स बने हैं एकोमोडेशन, भोजन था। तो वहां पर एक बहुत बुजुर्ग भाई बैठे थे भोजन करने, और बाकी कुमार थे वहीं के, और वो लोग क्रिकेट की मैच की स्कोरिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वो बुजुर्ग भाई ने कहा, अरे अभी अभी तो बाबा आए, इतनी पावरफुल मुरली चली, कुछ उसका भी तो आपको मतलब उसके बारे में बोलो, कम से कम भोजन में तो वो चर्चा नहीं करो। तो वो सारे भाइयों ने मिलकर उनको इतना सुना दिया, इतना सुना दिया कि वो चुप ही हो गया भाई। इतना सुना दिया कि मम्मा बाबा भी तो बैडमिंटन खेलने से लेके सारी कुछ बातें उनकी क्लास करा दी। तो दूसरा बीमारी आएगी, अचलाडोल आएगी, देह से डिटैच होने का अभ्यास आएगी। फ्रैक्चर हो गया, अभी इसलिए बेचैन नहीं होने, मैं सेवा कैसे करूं, पैर टंगा के हॉस्पिटल में है, सेवा कैसे करूं? तब वो सेवा की, अब यहां बैठकर मन से सेवा करो। इसके लिए भी मन अंदर से स्वीकार करे इस बात को, ऐसा नहीं कि विद्रोह करे अंदर से और बेचैन होते रहे कि मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा, मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा होगा। परीक्षा है ये भी, ये दूसरा पेपर। तीसरा पेपर स्टूडेंट से पेपर, स्टूडेंट्स आज सभी सहयोगी है, हो सकता है कल सबके सब विद्रोह कर दे। आज सभी अपने लग रहे, हो सकता है कल सबके सब विरोध कर दे, हमारे ही जाकर कंप्लेन कर दे आगे। एक बहन बता रही थी, ये सारी माताएं जिनको मैंने कोर्स कराया, जिनको मैं बाबा मिलन के लिए लेके गई, जिनको मैंने एंट्री दी किचन में, वही जाकर अब मेरी कंप्लेन कर रही है बहन जी के पास, मैं क्या करूं। विश्वास अलग चीज है, परंतु हमने देखा है जब टीचर्स का स्टूडेंट्स में मोह हो जाता है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, और वहां पर फिर उनके तरफ से कुछ दुख होता है या कुछ अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके लिए स्टूडेंट से डिस्टेंस, वो उधर हम इधर, चाहे कितने भी सहयोगी है, प्रेमी है, सब कुछ है, सब अच्छा है, परंतु हम इमोशनली उनमें इन्वॉल्व न हो जाए। क्योंकि वो लोग वहां जाकर क्या करते हैं आपको पता है? इसकी कोई गारंटी? विकारी संसार है, विकारों के चक्की में पीसे हुए लोग हैं। आज कहां है संघ? प्रेम करना, पालना करना, परंतु विद डिटैचमेंट, किसी का कोई भरोसा नहीं। अत्यधिक विश्वास कर लेना तो धोखा होगा, विश्वासघात होगा, फिर खुद ही पछताओगे, खुद ही पश्चाताप करोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ये बातें नहीं बतानी चाहिए थी। जैसे किसी लौकिक में एक बहू अपनी सास कितनी भी क्या कहते हैं उसको खुर्रात, बहुत गुस्से वाली और झगड़े वाली हो, फिर भी घर की बात घर में ही रखती है। और यदि हमने अपने इस घर की बात स्टूडेंट्स को बताई और उनको इन्वॉल्व किया इसमें और उनको सहारा बनाया, उन्हें क्या पता यज्ञ के अंदर क्या है, वो आते हैं और जाने वाले हैं, गहराई का उन्हें कुछ पता नहीं है, यहां की आंतरिक नियम मर्यादाओं का कोई ज्ञान उनके पास नहीं है। और हम अपने जीवन की सारी बातें उनको बता रहे, हम अपने बहन जी की कंप्लेंट उनको सुना रहे। एक बहुत ही खराब बात है पर हम बताएंगे। एक सेवा केंद्र पे जो बहन जी थे उनके पास 3 बिल्लियां थी पाली हुई, उसको बिल्लियों से बहुत प्यार था। जब बड़ी बहन जी कहीं बाहर गए थे तो छोटी बहन जी मुरली सुना रही थी, और छोटी बहन जी मुरली सुनाते समय मोह का पॉइंट आई, ये बता रही है जैसे देखो अपनी बड़ी बहन जी, मोह तो जाता नहीं बिल्लियों में से। ये उन स्टूडेंट के सामने समझा रही है, बता रही है जिनकी पालना उन्होंने की है बड़ी बहन ने। वो आने और जाने वाले हैं। जैसे मेडिकल में कहा जाता है पेशेंट किसी का भी सगा नहीं होता। आज आपके पास आएगा, डॉक्टरों के लिए कहा जाता है, कल उसके पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा, इधर से उधर जाते रहता है। उसी तरह इस संसार में भी कोई भी आत्मा हमारी सगी नहीं है। किसी को अपना सगा मत समझ लेना कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा, अव्यक्तवाणी संडे की दैहिक दृष्टि में बाबा ने उदाहरण दिया था, सेवाधारी अच्छा है, शिक्षक अच्छा है, अरे अच्छाई कौन सी है? ऊंची दृष्टि और ऊंची वृत्ति, ये अच्छाई है। ऊंची स्मृति, ये अच्छाई है। और उच्च अच्छाई क्या? इसको दैहिक दृष्टि कहा बाबा ने। दैहिक दृष्टि अर्थात महा महा महापाप, दैहिक दृष्टि अर्थात सुनहरी मृग माया, दैहिक दृष्टि अर्थात पाप की लकीर लंबी करते हो, दैहिक दृष्टि अर्थात स्वयं को और उसको वियोगी करते हो, दैहिक दृष्टि अर्थात एक विकार और उसके पीछे सारे विकार आ जाते हैं। देखना है तो क्या देखो? एक एक को त्यागी तपस्वी आत्मा देखो। ये ट्रीटमेंट बताइए। तो डिस्टेंस, तीसरा है स्टूडेंट से आने वाले पेपर, चौथा साथियों से आने वाले पेपर, दो बहनें हैं, एक बहन आगे जा रही है, दूसरी को ईर्ष्या। एक सेवा केंद्र है, अभी अभी कन्या आई है और आते ही सब लोग उसकी महिमा कर रहे हैं। एक सेवा केंद्र है जहां पर 3-4 एक साथ रहते हैं परंतु 3-4 का आपस में मतभेद है, संघर्ष है अंदर से निरंतर। तो सोचती है मुझे यहां नहीं रहना है, यहां एक रावण है, बाहर दूसरे सेवा केंद्र में 10 खड़े हैं, ये भूल जाती है। ना स्थान बदलेगा, व्यक्त महावाक्य बाबा के लिख के रखने हैं, ना स्थान बदलेंगे, ना व्यक्ति बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। स्थान बदलने से कुछ नहीं होता है, इतने ही स्थान बदल लो। हमें ऐसी ऐसी बहनों के बारे में पता है जो सेवा में, पहले तो किसी भी सेवा केंद्र पर स्थिर नहीं हो पाए, नीचे आए शांतिवन में। शांतिवन में तीन चार डिपार्टमेंट चेंज किए, ठीक नहीं हुआ, फिर अल्टीमेटली हॉस्पिटल भेजी गई। हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट वहां कुछ हुआ, दूसरा डिपार्टमेंट वहां कुछ हुआ, यहां का टाइमिंग ठीक नहीं है, यहां के इंचार्ज ठीक नहीं है, यहां के साथी ठीक नहीं है, मुझे चेंज कर दो, चेंज कर दो, चेंज कर दो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, यहां 24 घंटे ऑन कॉल, यहां कुछ और ऐसा करना पड़ता है, यहां मैं थक जाती हूं। आज वो घर पर है। ठीक तो हो ही नहीं सकता। यहां से जाने के बाद जिसने एक बार इस जीवन का सुख, बाबा का प्यार एक बार भी यदि अनुभव किया होगा, वो यहां से कहीं और सुखी हो ही नहीं सकता। चाहे ऊपर से कितना भी दिखाए हम ठीक है, एक्स बी केस, एक्स बी केस की भी अपनी एक टोली है जो पहले ब्रह्मा कुमारीज में थे और अभी उसको छोड़ दिया है, और आपस में मिलते और अपने अनुभव सुनाते, हम कितने खुश है, पहले हम कहां फंस गए थे वहां पर। ऐसे भी है, ऐसे भी है, पर वो कितना भी कहे उनका दिल अंदर से जानता है कि हमने यहां जो पाया था वो कहीं पर भी नहीं है। वो बीच में कौन, रामपाल जी, एक ब्रह्मा कुमारी बहन जो हमारे पास थी, मतलब यज्ञ में कई समय, फिर जाकर रामपाल जी की शरण में चली गई। और संत रामपाल जी, हाँ जो भी है इधर के ही है, फिर उसने अपना एक वीडियो भी बनाया कि उसमें उसने अनुभव शेयर किया, देखो मैं ब्रह्मा कुमारी में थी और मेरे पति की तबीयत, पति ने मेरे पिताजी या भाई, उसको जॉब मिल ही नहीं रहा था, मैंने कितना कहा बाबा से, बाबा ने कभी मदद नहीं की, मैंने दादियों से भी कहा, दादियों ने कभी मदद नहीं की, बाबा से भी मिली उधर जाके, अभी जैसे ही रामपाल बाबा जी की शरण में आई हूं, उसके एक्स बी के अनुभव, मेरे पिता मेरे भाई को भी जॉब मिल गया, पिता की तबीयत ठीक नहीं थी वो भी ठीक हो गई। तो ऐसा भी है। आज सुबह की साकार मुरली, उन सत्संगों में जाने की मना नहीं है, यहां आने की मना है, क्योंकि पवित्रता है यहां। इस यज्ञ से आज तक जो भी भाई और जो भी बहने बाहर गए हैं, कारण एक ही रहा है। ऊपर से कारण बहुत सारे, झगड़ा हो गया, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इसका वो, इसका वो, इसका ऐसा, उसका वैसा, कारण एक ही है, अपवित्रता, विकार, काम वासना प्रकट हुई, फिर से खींच हुई और रोक नहीं पाए। एक ब्रह्मा कुमार समर्पित, एक ब्रह्मा कुमारी समर्पित, भाग कर शादी करते और फिर दादी से माफी मांगते रहते। आज भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, परंतु क्या वो शक्ति है जो पहले थी, वो पावर क्या उतनी, वो आवाज में वो पावर रहेगी, वो बल रहेगा, वो वाइब्रेशंस रहेंगे प्यूरिटी के। कोई कितना भी छिपाए, आवाज धोखा नहीं दे सकती। जो प्रभाव है वो वाइब्रेशंस का है। भाषण देने वालों की कमी नहीं है संसार में, वक्ताओं की कमी है। टीचर्स से मुलाकात, अव्यक्त महावाक्य बाबा के, वो कलाकार हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, अशरीरी नहीं बना सकते। सभी कुमारियों को भाषण देने की कला सीखनी है, ये बात आने वाले संडे की मुरली में है। बाबा ने हर तरह से तैयार किया है। पवित्रता से आत्मा में बल आएगा, धारणाओं से वाणी में शक्ति आएगी, और उस कला को भी सीखो। खास कुमारियों से मुलाकात है, वो भी सीखो। तो पेपर स्टूडेंट से आएगा, अगला बताया साथियों से आएगा। अभी जो अभ्यास किया यहां पर, रोज ही अभ्यास करना है। सामने उनको बिठाना है जो हमारे साथ रहती है, सूक्ष्म वतन में, विजुलाइजेशन में। ये वही महान आत्मा है, ये वही श्रेष्ठ आत्मा है, मैं इस आत्मा से संपूर्ण संतुष्ट हूं। ये नया विजुलाइजेशन क्रिएट करना है। अगला पेपर, छोटों से पेपर, छोटे अर्थात कुमारी और कुमार, या जो भी आते हैं सेवा केंद्र पर, जिनकी हमने प्यार से पालना की, जिनको हमने सब कुछ सिखाया, भोजन बनाना सिखाया, बोलना सिखाया, सब कुछ करना सिखाया, और एक दिन वही विद्रोह कर बैठे हमारे विरुद्ध। अब तक हमने उनके लिए सब कुछ किया, प्यार किया, बहुत दुलार दिया, त्याग किया उनके लिए कुछ कुछ, और एक दिन वही हम पर आरोप लगाए, इल्जाम लगाए, उंगली दिखाए, तो अडोल रह पाएंगे? वो मां बाप तो रहते हैं ना संसार में, जो शहर है उसी शहर में, जहां उनका घर है उसी शहर के वृद्धाश्रम में मां बाप रहते हैं, ओल्ड एज होम। बेटा उसी शहर में, परंतु मां बाप ओल्ड एज होम में। कटु घुट वो भी पीते हैं। यहां पर हम भी एक रीति से मां बाप है उन सब के, जिनका हमने कोर्स कराया, परंतु मां बाप की वहां एक गलती हो गई कि अपने बच्चों की परवरिश करते करते अपेक्षाएं भी बहुत सारी बना ली। यूअर चिल्ड्रेन आर नॉट यूअर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। खलील गिब्रान की एक कविता है कि मां बाप के लिए, कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी जो बेटी है, तुम्हारे बेटे और बच्ची नहीं है, वो तुम्हारे द्वारा है पर तुम्हारे लिए नहीं है। दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। इसलिए जो भी छोटे हैं और जिनकी भी हमको पालना करनी है, उनको हमें अपने आप को ऊंचा रखना है, उनके लेवल पे नहीं आना है नीचे, अपने आप को ऊंचा ही रखना है। नहीं तो उनसे एक्सपेक्टेशंस, उनसे प्रेम चाहिए, उनसे अटेंशन चाहिए, उनकी केयर चाहिए, वो मेरी सेवा करे। आज सेवा कर रही है, कल छोड़ के चली जाए, तो क्या हम आहत हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे? दुख अर्थात अपवित्रता। हम सोचते हैं कि ये अच्छी सेवा करे, हम किसी की कोई गारंटी यहां नहीं दे सकते। कब किसकी बुद्धि पलट जाए ये भी नहीं बता सकते। ऐसे ऐसे हमने कुमार देखे हैं। एक कुमार म्यूजियम में कितना सालों तक सेवा करता रहा, कितने सालों तक, हमको उसको देख के लगता था कितना ये निरंकारी कुमार है। बहन जी की रिपोर्ट लेके आता था, कभी कुछ लेके आता था। मैंने कहा तुमको कोई तकलीफ? कहता था मुझे बहुत दर्द है। मैंने कहा तुम कभी दिखाते क्यों नहीं? मेरा क्या है, मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो बस सेवा करनी है। एक दिन बहन जी ने ऐसे ही पिकनिक के लिए कहीं भेजा कश्मीर, कुछ कन्याएं भी थी, वहीं पर 3 दिन में प्यार हो गया, और शादी आने के बाद बहन जी को न बताए कर भी ली, और बाद में फोन करता है, अब मुझे बचाओ मैं फंस गया हूं। हमको तो शॉक लगा, ये साइकिल से देखते थे उसको, डिब्बा ले जा रहा है मधुबन से, दिन रात सेवा करने वाला, अचानक कहां से वासना जगी। हर एक अपना भाग्य लेकर आया है, जिसका जितना भाग्य है तभी तक इसी यज्ञ में रहेगा, भाग्य बुरा होते ही आउट। इसके लिए हमें दुखी नहीं होना है, उनके लिए पेपर उनके द्वारा भी आएगा, आएंगे तब पेपर आएंगे, पर हम दुखी तब होते क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत है उनसे। हम चाहते हैं कि ये परफेक्ट ब्रह्मा कुमारी बन जाए, जैसे हम में त्याग तपस्या थी, हम में जो वैराग था, इस कुमारी में भी वही वैराग आ जाए। नहीं हो सकता, उसका वो पार्टी नहीं है, उसमें वो शायद संस्कार ही नहीं है पालना के, और हम सोचते हैं ये बन जाए, ये मेरी लौकिक बहन है, इसको मुझे बना के रहना है। प्रतिज्ञा ही कर ली, इसको ब्रह्मा कुमार बना के छोड़ कुमारी बना के छोड़ूंगी। बेरहमी से रहम, बेरहमी से रहम, तो छोटों से परीक्षा आएगी, अपने आप को ऊंचा कर देना है। फिर है बड़ों से पेपर, अगला पेपर है इस अग्निशिखा जीवन में बड़ों से पेपर, ये भी होगा। और ये पेपर वास्तव में हमारा ही निर्माण किया हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस शायद ज्यादा हो रही, हम सोच रहे हैं कि इन्होंने ऐसा करना चाहिए, इन्होंने वैसा करना चाहिए। हम ये भूल रहे हैं उनको उस सीट पर किसने बिठाया है। माना कि वो डिसीजन गलत है भी है, पर अगर इसको इस भाव से सोचे कि यहां जो बैठा है और उसके द्वारा ये डायरेक्शंस आ रहे, हमको लगता है ये डायरेक्शंस बिल्कुल आउटडेटेड, बिल्कुल ठीक नहीं है, पर बिठाया किसने, अगर ये भाव होगा। ये अव्यक्त मुरली इस पर एक, चलिए हमें डेट याद नहीं है, परंतु बाबा की टीचर बहनों से मुलाकात, बहुत स्ट्रांग शब्द है बाबा के उसमें ये पॉइंट के विषय में। तुम समझते हो वो मूर्ख है, पर उसके लिए भी बाप खुद जिम्मेवार है, बाप ने उसको वहां बिठाया। तुम क्या समझते हो कि बाप इतना मूर्ख है कि मूर्ख को बिठाएगा? ये समझो कि उसके द्वारा जो आएगा वो मेरे द्वारा आ रहा है, तो तुम्हारा अहित नहीं होगा। खुद सोचोगे, अपनी बुद्धि चलाओगे, नहीं ये मैं नहीं सोचती, मैं ऐसा नहीं, ये वैसा है। एक तो यहां समर्पण नहीं है, फिर समर्पण बहुत गहरी चीज है। समर्पण का चार चीजों से कोई रिश्ता नहीं है, बैच, श्वेत वस्त्र, रहने का स्थान और समारोह, इसको समर्पण नहीं समझ लेना। बैच, वस्त्र, स्थान और समारोह, समर्पण किसी समारोह का नाम नहीं है। समर्पण दो उस घास की तरह है जो कि पानी होता है तालाब में, उसके नीचे जमीन पर उगती है, इधर से पानी आया तो इधर, इधर से पानी आया तो इधर, जहां मैं है मैं समर्पण नहीं है। समर्पण अर्थात ही मैं समाप्त, परंतु यदि समर्कपन का ही अहंकार हो जाए तो विडंबना है, दुख है। जब आए थे सेवाधारी थे, कन्या थे, छोटा आय था इंग्लिश का, समर्पण की प्रोसेस से गए, अभी कैपिटल आय बन गया है मैं, मेरा सेवा केंद्र, मेरे स्टूडेंट। मैंने आज बहुत अच्छी मुरली चलाई, साकार महावाक्य, एक दो हफ्ता पहले। अरे कल क्या हो गया था फिर, कल क्या हुआ था चलाने को? समर्पण अर्थात बलिदान, समर्पण अर्थात कुर्बानी, समर्पण अर्थात हिंदी में सबसे ऊंचा शब्द है उत्सर्ग, उत्सर्ग अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, कुछ भी ना बचे, देश के लिए उत्सर्ग, कुर्बानी, बलिदान बहुत ऊंचे शब्द है। त्याग शब्द में अहंकार आ सकता है, व्यक्ति जिसका त्याग करता है उसी का अहंकार आता है। एक पत्रकार हिमालय की गुफा में गया, एक महासन्यासी था उसका इंटरव्यू लेने के लिए, और उससे पूछा कि आप यहां अकेले? वो कहता है हां मैं अकेला। आपकी बैच बैच उनकी सन्यासियों की जो बैच होगी 1940s की पुरानी 40 साल पहले, उन्होंने कहा आपके जो साथी थे वो सारे बड़े बड़े आश्रमों में हेड बन गए हैं, उनके हजारों शिष्य है। सन्यास की भी तो बैच होती है ना, साथ में बनने वाले सन्यासी। अब वो उधर हिमालय में चला गया, उसके साथी बड़े बड़े आश्रमों के मथाध्यक्ष बन गए। तो पत्रकार पूछता है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने भी आश्रम बनाने चाहिए, आपके भी शिष्य होने चाहिए? वो कहता है बिल्कुल नहीं, मेरा एक भी शिष्य नहीं है। अहंकार किस बात का है? मेरा एक भी शिष्य नहीं है। और वो जो दूसरे है उधर, उनका अहंकार क्या है? मेरे इतने सारे शिष्य है। ज्यादा फर्क नहीं है दोनों की अवस्थाओं में? बीच में शिष्य है, दोनों की बुद्धि उसी में। एक गृहस्थी है, बीच में स्त्री है, वो उसमें डूबा हुआ है। एक सन्यासी है, उसका अहंकार है मैंने स्त्री को छोड़ दिया, उसकी भी बुद्धि वहीं टिकी हुई है। एक है जो कहता है मुझे जिलेबी बहुत पसंद है, एक है मैंने जिलेबी मैं बिल्कुल नहीं खाता हूं, मैं छोड़ दी है जिलेबी का, मुझे नाम मत लो जिलेबी जिलेबी। एक इधर है, एक शीर्षासन कर रहा है त्याग, पर बुद्धि बीच में अटकी हुई है दोनों की। जो बड़ों के मुख से निकल रहा है। अच्छा, एक बार दादी गुलजार कहीं गई थी तो बहुत सारी बड़ी छोटी बहनें आ गई दादी के सामने, उन्होंने कहा ये बड़ी बहनों को कुछ करो, ये हमको बहुत सताती है। तो दादी ने क्या कहा था पता है गुलजार दादी ने? तुम ये समझो कि तुम उसकी मां हो, जगत माता बनकर पालना करो। अगला पेपर बाहर वालों से पेपर, बाहर वाले पुलिस आ जाए तहकीकात करने, बाहर वाले विरोधी बन जाए आरोप लगा दे बंद करो ये क्या कर रहे हो तुम लोग यहां। इसके लिए, इस पेपर के लिए भी तैयार रहना है, और इसलिए उनको सहयोगी बनाना बहुत आवश्यक है, किसी ना किसी रूप से उनसे संपर्क रखना, किसी ना किसी रूप से स्नेह मिलन होता रहे, हफ्ते में एक बार या महीने में दो बार सेवा केंद्र पर। एक अभ्यास हम आपको दे रहे हैं, हर महीने में हर दिन कौन सा डे है वो इंटरनेट से जाके निकालो, लेबर्स डे, डॉक्टर्स डे, वो सारे डेज हमारे पास हो। जैसे अभी विमेंस डे आया, उसी तरह अभी 20 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है, 21 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ कलर्स है, ऐसे बहुत सारे डेज है। हर दिन के लिए एक डे, लेबर्स डे। सारे डेज की लिस्ट हमारे पास हो, ठीक है, और अपना जो शहर है कौन सा ऐसा स्थान है अभी तक वहां हम नहीं पहुंचे, आईटी कंपनी, डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, और उस पर्टिकुलर डे में हम किसको बुला सकते हैं? जैसे लेबर्स डे क्या करें, इसमें कुछ स्नेह मिलन हो सकता है? सोचो, कोई भी इस तरह के बहुत सारे डेज है, हर दिन के लिए एक एक डे बना हुआ है, अनरिलेटेड है कुछ कुछ, उनको छोड़ दो। कुछ कंपनी, आईटी कंपनियों का एक डे, क्योंकि वो दिन एक आधार बनेगा जिस पर हम, जैसे वो एक दीवार पर ये है जिसमें हम अपना ज्ञान टांगेंगे, वो एक निमित्त बनेगा वो दिन, उसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो डेज की लिस्ट निकालना, अपने शहर का पूरा चार्ट मैप, उसमें मैप शहर का, गांव का, एरिया का, उसमें कौन सा एरिया है जहां तक, जहां पर हम अब तक नहीं गए, और फिर प्लानिंग करना यहां किसको भेजे, फिर ढूंढो स्टूडेंट्स में से कौन सबसे स्मार्ट है जो ये काम कर सकता है, उससे रिलेटेड फील्ड में कौन है, डेंटल कॉलेज वाला कोई है क्या, मेडिकल कॉलेज वाला कोई है क्या, ये डॉक्टर को 10 साल से निमंत्रण दे रहे आओ 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 माइंड बॉडी मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस में, वो नहीं आया, कुछ दूसरी युक्ति से उसे भेजा जा सकता है क्या? क्या करे कि जो कैसे भी करके उनकी सेवा हो और वो सूक्ष्म रीति से सहयोगी बनेंगे? नहीं तो जो लोग थोड़ी थोड़ी लोग निगेटिविटी सुनते रहते हैं यहां वहां से, थोड़ा सा एक डिससर्विस एक सेंटर पर हो गई तो उसका प्रभाव बहुत दूर दूर फैलता है। मीडिया बहुत स्ट्रांग है आजकल और वहां पर रिकवरी बहुत टाइम लगता है, फिर चार चार पांच पांच साल लग जाते हैं। तो बाहर वालों से पेपर, अगला कितने हुए? सात। आठवां मधुबन से पेपर, ये आप लोग थोड़ा ज्यादा ही जानते हैं हमसे। कौन से पेपर आते हैं मधुबन में? सबसे बड़ा पेपर एकोमोडेशन। तो पहले से ही अच्छे से सकाश सकाश कम पड़ रही है, जाने से पहले अच्छे से सकाश देकर जाना है। एक तो एकोमोडेशन, दूसरा भोजन, टोली, और भी कुछ? रिलेशंस। और जिस माता को लेकर जा रहे हैं वो माता ट्रेन में गुम हो गई तो? जिसको लेके जा रहे हैं वो वहां जाके हार्ट अटैक, उसका कोई नहीं है, उसके घर में सारे विरोधी है, अब कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन? जाते जाते सामान सारा चोरी, बैग, या उधर कुछ चोरी, कुछ भी हो सकता है। ये हम देखते हैं कुछ कुछ बहनें बहुत बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है सारी चीजें, और कुछ कुछ एकदम घबरा जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। जिस पार्टी को, जिस माता को लेके आ गई, वो माता जैसे ही एडमिट हो गई तो उसको इतना टेंशन आ जाता है और वो समझ नहीं आता है करना क्या है अब। ये सारी स्किल्स है जो सीखनी है। इमरजेंसीज कैसे हैंडल कर, अभी कल का ही वरदान था ना, एक्यूरेट हैंडलिंग पावर, इसको कहते हैं एक्यूरेट। जब अपनी मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल करोगे तभी तुम हैंडलिंग पावर तुम में आएगी, वहां एकदम हलचल हो जाती है। कोई किसी को लेके आया, वो गुम हो गए, दिख ही नहीं रहा कहां चली गई, कैसे बात करना है, किससे कांटेक्ट करना है, कौन कंसर्न व्यक्ति है, वो सारी स्वयं को ट्रेनिंग देनी है कि वहां जाने के बाद किस तरह से वो जो ग्रुप है उसको किस तरह कंट्रोल में रखना है। नहीं तो कोई अपनी मर्जी से कहीं पे भी जाता है, कहीं कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, कोई वहां जाके कोई डिससर्विस कर रहा है। शायद उनको, उन स्टूडेंट्स को वो ट्रेनिंग नहीं दी गई थी वहां करना क्या है, वहां जाके व्यर्थ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसके संग में जाना है किसके संग में नहीं जाना है। इसके लिए उनको हमें ट्रेनिंग देकर जानी है। ये सब होगा, बाबा ने कहा यज्ञ ही लेगा, हमें उन्हें ऐसी ही पूरी अच्छी ट्रेनिंग देकर भेजना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ये आप सब जानते ही है, पर हम कह रहे हैं इसको हमने अलग से रखा है, ये भी एक पेपर है, इसको भी पास करना है, इसमें भी फुल मार्क्स लेने हैं, इसकी भी अपनी एक ट्रेनिंग है, इसकी भी अपनी एक पावर है, अपना एक मैनेजमेंट कोर्स है, उसमें आप देख सकते हैं कि मुझे कौन कौन सी चीजों की अभी ट्रेनिंग करनी बाकी है। जो मुझे दूसरों को सिखाना है पहले खुद को सीखना पड़ेगा, कैसे मैं उनको सिखाऊं, उसमें हजारों चीजें और वहां की तो बहुत सारी चीजें हैं, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, समय भी कम है। अगला पेपर है आर्थिक पेपर, फाइनेंशियल। पैसों की कमी, चाहे कुछ भी हो जाए, भीख नहीं मांगनी, एक कन्या जॉब करती है, वो बता रहे थे हम, मैं क्या करूं अब, बहन जी मेरे पीछे ही पड़ी हुई है मोबाइल के लिए, मोबाइल लेकर दो। एक लेकर दिया है पर उसको अच्छा वाला चाहिए जिसमें सारे फंक्शंस हो, इसलिए मैंने जाना ही छोड़ दिया है सेंटर पर। कन्या जॉब करने वाली, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और जहां पर पवित्रता बहुत अच्छी है वह सपने अपने आप आएगा। हमें किसी को खाली इशारा देने की आवश्यकता है। मधुबन में माताएं आई थी, दादी प्रकाशमणि ने सुबह कहा था कि जो माताएं जितना दे सकी है, दे सकती है दे। माताओं चिल्लाने लगी, दादी नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं, हम बहुत गरीब है, हम बहुत गरीब है, हमारे पास तो बड़ी मुश्किल से हम दादी यहां पहुंचे। और वही माताएं शाम को अपनी बहू और ननंद के लिए साड़ी और क्या क्या चीजें खरीद कर मार्केट से एंट्री कर रही है इधर मधुबन। जिसको देना है उसको वो खुद ही देगा, और जिसको देना ही नहीं है वो तो कुछ भी करो कभी नहीं देगा। इशारा दे देना और छोड़ देना, बस ज्यादा उसके डिटेल्स में नहीं जाना। इशारों की भी लिमिट है, इसका मतलब शायद वो नहीं करना चाहते, हम जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कई खराब अनुभव है कहीं के, कुछ कुछ लोगों के वहां से छोड़ के इसलिए यहां आए, उनको लगता है यहां पर भी ऐसा ही है। समझते हैं परंतु जिनको करना ही नहीं, जिनकी इच्छा ही नहीं है, तो जब ऐसी आर्थिक तंगी होगी, और ऐसा होगा, क्राइसिस, सडन क्राइसिस, उसके लिए भी स्वयं को तैयार रखना है। इसके लिए बाबा ने चुका है ना बचत, वो भी हो, पानी जैसा खर्च नहीं करना है, कम खर्च बाला नशीन, उसमें पैसा कम शक्ति कम टाइम कम, ये तीन चीजें कम और सेवा अधिक। प्लानिंग ऐसी करो सेवा की जिसमें तीनों ही चीजें कम लगे और सफलता अधिक से अधिक हो। ऐसा नहीं कि हमने सेवा का ऐसा प्लान बनाया, इतना बड़ा प्लान बनाया, परंतु सफलता कुछ नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई, और वेस्ट ही ज्यादा हुआ, संघर्ष ज्यादा हुआ, अंतर कलह हुआ। यज्ञ को आज भय बाहर के शत्रुओं से नहीं है, आंतरिक शत्रुओं से, अंतर कलह, अंतर द्वंद, आपस में टकराव, आपस में संघर्ष, संस्कार। तो ऐसी अगर परिस्थिति आती भी है उसमें भी अचल अडोल रहना। जैसा बेगरी पार्ट यज्ञ में आया था वैसा सेंटर पर भी आएगा, और तब बाबा की जो स्थिति थी वही हमारी स्थिति भी हो। कितनों ने बाबा से कहा कि बाबा हम जा रहे हैं, हम कमा के लाएंगे। बाबा ने क्या कहा था, जरूरत नहीं है किसी को कहीं जाने की, अपने भी चले गए। परमात्मा यज्ञ है, गरीबों की पाई पाई से भरेगा, स्वतः भरेगा। सावल शाह की हुंडी है, अपने अंत तक मिलेगी, बाप किसी को भूखा नहीं रखेगा। हाँ, वो पनीर वाली सब्जी और अचार और वो सब नहीं मिलेगा, उसका वर्णन नहीं किया भगवान ने, सिंपल का वर्णन किया है। तो उसके लिए भी स्वयं को तैयार रखना है, नहीं तो जैसे ही किचन में गए भाई अनुभव सुनाते, जैसे ही भोजन दिखा एकदम भूखी खत्म। आज वही फिर से सफेद चावल देखते ही पता नहीं कुछ हो जाता है। हाँ, उस चावल को तेल से गुजारो तो फिर अच्छा लगता है खाने को, छोक लगाओ चौक घाट, चौक घाट पता है ना जैसे दूसरे घाट होते हैं ना संसार में, वैसे चौक घाट, हर चीज को, सादी दाल है उसको चौक लगाओ और कुछ कुछ करो, वो है उसको हर चीज को चौक लगाओ। और फिर बाबा कहेंगे ये लो दाल रोटी, तो फिर खुशी खुशी खाएंगे क्या? हर चीज के लिए आत्मा तैयार चाहिए। एक परिस्थिति ऐसी आएगी उसमें वो हमारे विश्वास का, निश्चय का, श्रद्धा का, फेथ का पेपर होगा, कितने हम उसमें अटूल हैं। या हलचल में आ जाएंगे और मांगना चालू करेंगे, फोन लगाना चालू करेंगे, इधर ये नहीं है, इधर वो नहीं है, इधर वो नहीं है। कितने हुए? 9 लास्ट। लीगल पेपर्स, एक बताया था आर्थिक, वो दूसरा ये है लीगल, पुलिस, कोर्ट, लॉ। हम ये नहीं, अकाउंट्स, ये सारी। मधुबन के पेपर में अकाउंट का तो किसी ने बोला ही नहीं, अकाउंट्स भी तो एक पेपर है हाँ तो सहज हो गया है तो वो, पर पेपर वो भी है क्योंकि डरती है बहने, हमने देखा है जो बिल्कुल ही, मतलब जिनका लौकिक शिक्षण कम है, जिन्होंने कोई चीज उनको पता ही नहीं है, उनको थोड़ा डर लगता है ये सब चीजों से। अकाउंट के पहले दिन हमने देखा कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है कि अब जाने की जरूरत ही नहीं पड़े दूसरे संभाल लेंगे घबराहट होती है जैसे ही जाते हैं और पूछते हैं ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, कुछ कुछ होने लगता है, डर लगता है एकदम, हाथ कांपते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। लीगल, लीगल का भी ज्ञान चाहिए, हाउ टू हैंडल पुलिस केसेस, हाउ टू हैंडल कोर्ट। बुद्धू नहीं रह जाना है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, ये क्या होता है, एफिडेविट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात ऑलराउंडर स्मार्ट, हर चीज को हैंडल करते आना चाहिए, हर चीज को, वो चाहे मेल भेजना, मेल रिसीव करना, गेस्ट भेज, गेस्ट हॉस्पिटैलिटी, हर चीज उसमें आती है, मंच संचालन से लेके ओवरऑल हैंडलिंग से लेके सब कुछ, मॉब मैनेजमेंट, मॉब मैनेजमेंट अर्थात क्राउड मैनेजमेंट, बहुत बड़ी भीड़ है उस भीड़ को कैसे हैंडल करना, वो स्पीकर के ऊपर है जिसके हाथ में माइक है, वो जो डायरेक्शन दे रहा है, जो ग्रुप लीडर है, टीम लीडर है, वो कितना पावरफुल है, वो पावरफुल तो सारा ग्रुप कंट्रोल, वो कमजोर तो ग्रुप भी इधर उधर भटकेगा। मेडिकल में ट्रायज होता है, ट्रायज में क्या करते हैं, जैसे बहुत बड़ी आपदा हो गई, अब कोई फंसा हुआ है भूकंप में, नीचे फंसा हुआ है, कोई अभी मरने को है, बस 2 मिनट में मर जाएगा, किसी की टांग टूटी हुई है, कि कोई छोटी मोटी चोट लगी है, अब इतने हजारों लोग हैं और बहुत बड़ी आपदा आई है, कैसे मैनेज करना है इसको मेडिकल, तो ट्रायज सिस्टम बनी हुई है। एक जन कहेगा जो चल सकते हैं मेरे पीछे आ जाए, तो वो हट जाएंगे, जितने घायल लोग हैं जिनमें से जो चल सकते हैं वो मेरे पीछे आ जाए, तो एक जन उन सबको लेके एक तरफ चला जाएगा। दूसरे जो एकदम ही बस अभी गए मरने वाले, उनको छोड़ देते, उनका कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही बैडली इंज्योर्ड है, पूरा की पूरा खोपड़ी और पूरा हाथ और ये सब फ्रैक्चर है, अभी बस गए प्राण, उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनको छोड़ दो, उसका कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी करने के बाद भी हो जाएगा। फिर उसमें से कुछ बीच वाले हैं, वो जो थोड़े फ्रैक्चर वाले हैं, उनको फटाफट वहां फर्स्ट एड करो और वहां से रिमूव फ्रॉम द साइट, साइट सीन सेफ्टी, उनको सीन सेफ्टी करो। कुछ है उनको वहीं पर ही मैनेजमेंट अगर कर दो तो बच जाएंगे, ऐसे भी है, उनको इतना टाइम नहीं है कि उनको लेके जाया जाए, पर वहीं पर अगर कर दो तो वो बच जाएंगे, तो सब कुछ छोड़ के प्रायोरिटी वो हो जाती है। तो ये कैसे मैनेज करना, उसी तरह पूरी क्राउड को भी किस तरह से मैनेज करना, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई कह रहा है हमको वहां दिलवाड़ा जाना है, कोई कह रहा है नहीं नहीं हमको पहले वहां जाना है, कोई कह रहा है हमको इधर जाना है, हम तो इधर ही रहेंगे, कोई कहता है नहीं नहीं मेरा सिर दुख रहा है मैं तो नहीं जाऊंगी कहीं। हजारों मत होते लोगों के। ग्रुप को मैनेजमेंट करना कला है, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग क्राउड, ये भी सीखना है। हम बात कर रहे थे लीगल की, तो उसी तरह पुलिस स्टेशन एंड कोर्ट, इनसे संबंधित कुछ कुछ बातें हमें पता हो। ऐसा नहीं कि पुलिस आ गया एकदम घबरा गए, अब क्या करना है पता ही नहीं, डर गए एकदम से। एक बहन स्कूटी पर जा रही थी, उसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, इधर आओ, तुम सिग्नल क्रॉस किया, तो वो अपनी ब्रह्मा कुमारी बहन थी, अरे भैया हम आए थे पिछली बार, आप भूल गए राखी बांधी थी। वो बोल रहा है कब, अरे अभी तो राखी होके गई, उसको ऐसा घुमा दिया तो ठंडा हो गया। बोले हाँ शायद आप ही आए थे, जाओ। तो लीगल केसेस, लीगल डॉक्यूमेंट्स, और आजकल और एक चीज जो सूक्ष्म है, जो कन्याएं हैं जो आती है उनका थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मां बाप का भरोसा नहीं है। ब्लैकमेलिंग बहुत चल रहा है, आरोप कर देगी कि आपने हमारी कन्या को भगाया, हुआ है, हो रहा है, पेरेंट्स जाकर पुलिस स्टेशन में कि इन्होंने हमारी कन्या को भगाया ब्रह्मा कुमारियों ने। इसके लिए अगर कन्या है तो उनके पेरेंट्स, भाई, गार्डियन जो भी है वो हमारे विश्वास पात्र हो, नहीं तो बताया नहीं जा सकता है। झूठ इतना है संसार में, झूठ खंड है, पल पल झूठ है, सब जगह झूठ का बाजार लगा हुआ है, कौन क्या करेगा बता नहीं सकते। इसके लिए हम अपनी सेफ साइड में रहे, जरूरत पड़े तो FIR दर्ज करना पड़ सकता है, कराओ, टू बी ऑन द सेफर साइड। हम बैक फुट पे नहीं रहे, फ्रंट फुट पे रहे। उसके लिए ये सारी भी जो चीजें है, लीगल वाली चीजें, वो डरने वाली चीजें नहीं है, वो भी पेपर है और वो भी आएगा एक दिन। अचानक किसी ने फांसी लगा ली और आपको बुलाया, बताओ, गवाही के लिए बुलाते हैं, विटनेस के लिए या बयान के लिए, तो उसमें डरना नहीं है, बयान देना है दे दो और चलो, सब करना पड़ेगा और ये सब होगा, और ऐसे पेपर बहुत आएंगे, क्योंकि यज्ञ के विरोध की जो पार्टियां है आसपास है, वो तो एक ही चीज है उनका लक्ष्य, ब्लैकमेल, कमजोरी को पकड़ना और बहन को या भाई को ब्लैकमेल करना, ये सब होगा। तो ये भी एक पेपर है जिससे गुजरना पड़ेगा। इसमें अचर अडोल, और अचर अडोल बनेंगे ज्ञान को बढ़ाने से, इंक्रीज लीगल नॉलेज। बुद्धू बन के नहीं बैठ जाना है कि हमको तो पता ही नहीं, हमको तो ये बैकग्राउंड ही नहीं है हमारा, वो भी पता चाहिए। एक बार रिवाइज करते हैं फिर क्लास पूरा करेंगे। सबसे पहला पेपर लौकिक, कट द ब्रिजेस, थ्रो द लैडर, ड्राउन द बोट, अनासक्त, निर्मोही, तोड़ निभाओ परंतु विद डिटैचमेंट। दूसरा, बीमारी आएगी जो सोची नहीं थी, वो कैंसर, वो फ्रैक्चर, कुछ भी हो सकता है, और होगा तो अचल अडोल, और ना हो उसके लिए अपने शरीर का ध्यान, एनुअल चेकअप, ब्लड चेकअप, यहां नहीं करते हो तो मधुबन में जब भी आए तब जरूर करना है एक बार फुल। ऐसा नहीं कि कोई बीमारी हो और हम सोच रहे हैं ये टेंशन की वजह से चल रहा है, ये मेरे स्ट्रेस के वजह से, हो सकता है वो है बीमारी। और दूसरी चीज, अगर दवाइयां दी जाती है उनको बीच में से फेंक छोड़ नहीं देना है, खुद से ही बंद कर देते हैं और फिर अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं और फिर कंडीशन खराब होती है, चाहे शारीरिक या मानसिक। और एक चीज, यदि मानसिक रोग के लिए बीमारी चालू की जाती है तो इसमें दवाइयां, तो इसमें ये कलंक नहीं समझो इसको, हर चीज के लिए ब्रेन में केमिकल इंबैलेंस होता है। चलो किसी के साथ बहुत बुरा हुआ, डिप्रेशन में चली गई है एक बहन, और उसको दवाई दी जाएगी, कहते अरे मैं ब्रह्मा को मैं कैसे लूंगी, हम तो कोर्स कराने वाले हैं, लोगों को टेंशन से फ्री लाइफ कैसे जीना है उसका सिखाने वाले, मैं थोड़ी ना ब्रह्मा, स्टूडेंट्स को पता चल गया तो परंतु ऐसा नहीं है। दवाइयां हेल्प करती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल्स जिनका लेवल लो हो गया है, एक तो डिप्रेशन, फिर उसके लेवल्स लो, जब उनके लेवल लो होते और डिप्रेशन बढ़ता है, और ये साइकिल है, कुछ चक्र, विशेष साइकिल। इसके लिए, इसको ब्रेक करने के लिए कुछ दवाइयों की बीच में आवश्यकता है, जो लेवल्स को बढ़ाएगा, फिर मूड को ठीक करेगा, और फिर आपके पास ज्ञान योग तपस्या धारणा सेवा सब कुछ है, उससे बाहर निकलो। थोड़े समय के लिए मदद लेनी पड़ेगी, ये नहीं समझो कि मैं कैसे करूं, मैं तो नहीं लूंगी, मैं मर जाऊंगी पर दवाई नहीं खाऊंगी, ये सब अहंकार ही है, ये भी अहंकार है। अच्छा नहीं खानी है तो फिर निकलो ना खुद बाहर, फिर ये भी है। फिर क्यों आप दुखी हो रहे हो, क्यों उदास है, फिर क्यों सारी रात भर बैठे हुए हैं, छत को देखते हुए, नींद ही नहीं है। कितनी बहनें तो यही कंप्लेन के साथ है, अनिद्रा, इनसोम्निया, नींद ही नहीं आती है, रात रात भर ऐसी गुजर जाती है, नींद ही नहीं है। सुबह अमृत वेला 4 बजे नींद आती है, फिर मुरली के टाइम पे जब मुरली सुनाना है तो किसी को बोल दो मुरली सुनाने के लिए, माता को या किसको, क्योंकि वो टाइम नींद आ रही है जबरदस्त, क्योंकि रात भर सोए नहीं है। और ये एक दिन नहीं, सदियों से, कितने सालों से चल रहा है। एक बहन आई थी 25 साल से सोई नहीं, हमने कहा किसी को दिखाया, नहीं दिखाया, होम्योपैथी ये वो किया पर कुछ नहीं हुआ। कितना घंटा सोते हो, आधा घंटा मुश्किल से, आवाज आती है तो नींद खुल जाती है। सोते कब हो, दिन में, ये एक, और दूसरी और एक बीमारी है दिन रात सोने की। डॉक्टर साहब अभी बोलो तो अभी सो जाएंगे, इतनी जबरदस्त खतरनाक प्रकोप, जब देखो नींद, मुरली सुनाई, नाश्ता किया, सो गए, फिर दोपहर में उठे, भोजन बनाया, भोजन किया, सो गए, शाम को गीता पाठशाला में गए, आए और फिर सो गए, भयंकर नींद। ये भी डिप्रेशन का एक सिम्टम है। डिप्रेशन दो चीजों से डायग्नोज होता है, अनिद्रा या अति निद्रा, शायद दुख है अंदर कुछ ना कुछ। तीसरा, अगला पेपर स्टूड, हाँ, बार बार खाने की। एक बहन, एक दूसरी छोटी बहन को लेके आई थी, कहती इसको ठीक करो। मैंने बोला क्या हुआ इनको, वो कह ये हर आधे आधे घंटे में भूख लगती है इसको, आधे आधे घंटे में भूख, अच्छा क्यों? तो फिर हमने थोड़ा हिस्ट्री डिटेल में ली तो पता चला उनका जो सेवा केंद्र है, बड़ी बहन जी बिल्कुल उसको हाथ नहीं लगाने दी, एक एक चीज गिन के है वहां पर। तो दमन, सप्रेशन, उधर की सारी इच्छाएं, जैसे ही मधुबन में आए तो ऐसी भूख लगती है, ऐसी भूख लगती है कि बात मत पूछो, क्या खाऊं और क्या ना, ये भी खाऊं वो भी खाऊं, कमरे के लिए भी खाऊं। कभी कभी ये डायबिटीज का भी सिम्टम है, पॉलीफेजिया इसको कहते हैं, बहुत भूख लगना। कुछ कुछ बीमारियों में भी होता है, परंतु डिप्रेशन में भी होता है और सप्रेशन में होता है। दमन दबा के रख दिया है, कैसे तो भी मर मर के, झुक झुक के अपने आप को एडजस्ट कर लिया, और जैसे ही वो दमन निकलता है, छूटता है, तो ये सब होता है। फिर डिप्रेशन में दोनों चीजें होती है, खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं, बिल्कुल भोजन से हट गया जी, और दूसरा दिन रात खाऊं, ये दोनों चीजें, बहुत सोना न सोना, ये दोनों ही डिप्रेशन के लिए। उसके लिए हिस्ट्री कुछ ना कुछ चल रहा है। एक बहन आई थी, उसको ऐसे ऐसे करने की बीमारी थी, और नॉन स्टॉप पूरी रात बिना थके ऐसे ऐसे उसको रोकना पड़ता है, हाँ बोलो क्या तकलीफ है। तो ऐसा होता है थोड़ी देर के बाद फिर, तो ये कोई भी बीमारी नहीं थी, कारण कुछ और ही था, कारण सेक्सुअल अब्यूज। बचपन में उसका कोई एक चचेरा भाई था उसके द्वारा, और बाद में ब्रह्मा कुमारी बन गई, और बाद में वो डिप्रेशन, और बाद में वही चीज अंदर ही अंदर ऐसे समा गई कि बाद में इसको सोमेटाइजेशन कहा जाता है, शारीरिक इफेक्ट, पर है शरीर में कुछ नहीं, बीमारी कहीं और है, सप्रेस्ड, सप्रेस्ड फीलिंग, इमोशन, रिवेंज, बदला, दमित भावनाएं, और बाद में फिर शरीर की सारी इससे निकलता है, जबकि शरीर में कुछ भी नहीं मिलता है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल, MRI किया सब नॉर्मल, वो तो क्योंकि अवचेतन मन में कहीं ना कहीं समाया है, और बाहर बॉडी उसको एक्सप्रेस करना चाहती है, यहां दर्द वहां दर्द, कहीं कुछ नहीं मिलता है। इतनी मोटी मोटी फाइल है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये भी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिटैचमेंट। नेक्स्ट साथियों से बाबा ने कहा है महान संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, सोमान के संकल्प, मैं किन के साथ हूं। नेक्स्ट छोटों से प्यार देना, पालना करना, परंतु वैसे ही पालना जैसे पेरेंट्स डिटैच होकर अपने बच्चों की पालना करें। उनमें फंस नहीं जाना, उनमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना कि ये ऐसा ही करे वैसा ही करे। हम उनको खाली बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमारी बात माने। डिटैच होके बताओ और छोड़ दो। बहुत उनके ओवर केयरिंग, ओवर पैम्परिंग नहीं करना है कि तुम ये करो तुम वो करो। उनको गिरने दो और खुद ही उठने दो और चलने दो, शक्तिशाली तब बनेंगे। कब तक उनको पकड़ पकड़ के चलाएंगे? इंडिपेंडेंट कर दो उनको, जैसे हम कैसे गिरे खुद और फिर उठे ना, उनको भी हमें वैसा शक्तिशाली बनाना है। चाणक्य ने कैसी ट्रेनिंग दी चंद्रगुप्त मौर्य को? पकड़ पकड़ के थोड़ी चलाया, धकेल दिया उसको कितनी बार तो पानी में जा। ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दी, कड़ी ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग। वैसे ही उनको भी शक्तिशाली बनाने के लिए कठोर बनना पड़ेगा बाहर से थोड़ा सा। उनको लगे कैसी बहन है निर्दयी, लगने दो, आंसू आने दो, वो आंसू ही सिखाएंगे उनको। जैसे हम डैश 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 सीखे। नेक्स्ट बड़ों से, वो कौन है, उनको निमित्त किसने बनाया है, जो उनके द्वारा आ रहा है वो उनका नहीं उधर से आ रहा है, यही भाव रखना है। नेक्स्ट बाहर वालों के लिए स्नेह मिलन के बार बार प्रोग्राम्स, उनकी सेवा किस तरह की जाए उसकी प्लानिंग, चार्ट निकालना, सब कुछ। नेक्स्ट मधुबन से, वहां जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है साइट सीइंग और ये और वो। गए थे तपस्या के लिए, तपस्या हुई नहीं। एक सेवा, एक रिट्रीट सेंटर था, तीन चार भाई लोग वहां रिट्रीट सेंटर में तपस्या करने गए अपने सेंटर से छुट्टी लेकर दो दिन के लिए। शाम को पहुंचे, शाम को बाबा के कमरे में एक घंटा योग किया, दूसरे दिन साइट सीइंग के लिए निकले, दिन भर घूमते रहे, शाम को पहुंचे, फिर तीसरे दिन और पूरा घूमे और अपने सेंटर पे जाके अनुभव सुनाया। हमने ऐसी पावरफुल योग भट्टी की, घूम ही रहे थे, योग तो किए ही नहीं जिसके लिए आए थे। मधुबन तपस्या भूमि है, सेवा भूमि नहीं। बहनों के लिए मधुबन तपस्या भूमि है ज्यादा। अपनी व्यक्तिगत पर्सनल तपस्या करनी है, स्वयं को रिव्यू करना है अपने सेंटर के जीवन को, पिछले 6 मास क्या किया, और प्लानिंग बना के आना है आगे क्या करना है। नेक्स्ट फाइनेंशियल होगा, तैयार रहना है स्वयं को, ऐसा किसी पर निर्भर नहीं हो जाए कि वो हमको ब्लैकमेल ही करना चालू करे, कोई रईस कोई अमीर। इतना निर्भर भी नहीं हो जाना है जो आधा कच्चा कच्चा ज्ञान में, हाफ कास्ट, आज कहा ना नशा नहीं चढ़ेगा उसको, ऐसे जो हाफ कास्ट वाले हैं और पर पैसों से बहुत अच्छा है, नहीं चाहिए तुम्हारी तुम्हारे पैसे और ना चाहिए तुम्हारी कार, पैदल जाएंगे, पर निर्भर नहीं हो जाना है इतनी इस तरह से कि वो गलत फायदा उठाने लगे। नेक्स्ट लीगल, जो वकील होंगे सेवा केंद्र पर आते हैं भाई या बहन, उनसे थोड़ी सी जानकारी लेकर अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखना है। ओम शांति। ज्यादा हेवी डोज तो नहीं है ना।